समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। 31 मार्च मंगलवार के इस नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर न्यूज मैगजीन आज सवेरे में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी को महावीर जयंती की बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज की दुनिया में भगवान महावीर का अहिंसा, सत्य और आंतरिक चेतना का शाश्वत संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उम्मीद है कि ये दिन हम सभी के जीवन में स्थिरता और शांति लाएगा। इसके साथ ही आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार सरफिरोजी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the entire Akashwani network. Yes, our entire team wishes you all a very happy Mahavir Jayanti. Like Sarfaroshi has already introduced our news magazine program Aaj Savere to all of you. We have a lot in store for all of you till 8 a.m. So stay with us, and today is 31st of March, the last day of the third month of 2026, and it's a Tuesday, so let's just wish you all a very happy Tuesday. And let's begin our program with the news headlines.
बिल्कुल तन्वी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री सुबह गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे अहमदाबाद के सारण स्थित किरण सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर वे वाव थराद जाएंगे, जहां वे लगभग 20,000 करोड़ रूपये की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारे संवाददाता से और अधिक जानकारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ जिले के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क में बिजली मंत्रालय के तहत 3,664 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा 750 करोड़ रुपए की लागत से ईडर बडोली बाईपास 4 लेन वाली सड़क और धोलावीरा मऊआना वोवा सांतलपुर खंड की आधारशिला रखी जाएगी। श्री मोदी 5,105 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए अहमदाबाद धोलेरा गलियारे के पैकेज 1 से 4 का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी रेल मंत्रालय की 891 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा खेड़ ब्रह्मा हिम्मतनगर असारवा ट्रेन को खेड़ ब्रह्मा से हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्री मोदी गुजरात के 34 जिलों में 38,949 घरों में नागरिकों को आवास प्रदान करेंगे, जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए अपने घर के सपने को साकार करेगा। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
And today is Mahavir Jayanti, as we have already informed you, the birth anniversary of 24th and last Jain Tirthankar, Bhagwan Mahavir. It is being celebrated across the country today. Mahavir Jayanti is considered to be one of the most auspicious day for the Jain community and holds a lot of importance in their religious life. Followers of Lord Mahavir celebrate this festival by chanting prayers, offering prasad and participating in chariot processions.
और तन्वीर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर के 5 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सभी को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इन सिद्धांतों को अपनाकर लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
The 7-day International Film Festival of Delhi 2026 will conclude today at Bharat Mandapam in New Delhi. The closing ceremony of the festival was organized yesterday in the presence of Lieutenant Governor of Delhi Taranjit Singh Sandhu, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and Delhi Tourism and Culture Minister Kapil Mishra. Speaking at the occasion, Delhi LG highlighted the transformative power of cinema and said that deeply personal stories can resonate across cultures and borders.
Hosting this International Film Festival in Delhi for the very first time has not merely been about screenings, it has been about opening a window through which the world sees us and we see the world.
Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said the film festival is a powerful medium for emerging artists and creatives from the country and the world to showcase their talent. She added that this event is not only a celebration of cinema but also an important effort to engage youth and channel their creative energy. Our correspondent reports that the festival extended the experience into an interactive cultural exchange, blending cinema with industry networking and also public engagement.
The closing ceremony of the film festival began with the national song Vande Mataram and the national anthem. Renowned actor Anupam Kher delivered a poetic tribute to cinema, holding the audience in rare silence while music by artist Ricky Cage heightened the atmosphere, culminating into a powerful closing performance. The week-long festival showcased more than 125 films from across the world, marking a major addition to India's global cinema calendar. Free public screenings, discussions, workshops and cultural programs were also organized as part of the festival. Talking exclusively to Akashvani News, filmmaker Anushka Rizvi shared her views on the importance of such film festivals.
It was so wonderful to have, you know, so many people from Bombay coming in and talking to us, people from Delhi who don't get the opportunity so often. So it's really, really wonderful to have this festival in Delhi, and I really, really hope that we continue to have more such festivals.
During the film festival, an exhibition was also at display, showcasing vintage film posters, including Sholay and Hollywood classics to celebrate cinematic nostalgia from various countries. During the event, films like Dhurandhar, Sitare Zameen Par, Pyasa, Tanvi the Great, Seerat, Roza and Dear Ma were screened for the visitors. Shiva Mishra, Akashvani News, Delhi.
राष्ट्रीय आधुनिक कला केंद्र NGMA ने कल 72वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने संग्रहालय के पहले छापांकन स्टूडियो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि NGMA भारतीय आधुनिक और समकालीन कला का महत्वपूर्ण केंद्र है। स्थापना दिवस समारोह में विभिन्न कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति दी।
As part of our series People's Padma on Akashwani, in our upcoming episode, we speak to Dr. Suresh Hangavadi. Dr. Suresh is renowned for his work on hemophilia care and advocacy. He will be honored with Padma Shri.
I am born with hemophilia. Hemophilia is a congenital bleeding disorder that is since birth. The main cause for hemophilia is lack of certain clotting protein. My mama, when he came to know that I too have hemophilia, he used to tell me he should become a doctor or do some research in this field.
To listen to this conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का सुचारू और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक यात्री वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड प्रणाली शुरू की गई है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने हरिद्वार जिले के रोशनबाद में इस प्रणाली का उद्घाटन किया। वाहन मालिक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। भारत की शीतल देवी को विश्व तीरंदाजी ने वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज चुना है। जम्मू कश्मीर की 19 वर्षीय शीतल देवी पिछले साल दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र बिना बाजू वाली तीरंदाज बनी। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में महिला टीम का रजत और मिक्स्ड टीम का कांस्य पदक भी जीता है।
And now let's move on to sports in IPL cricket. Rajasthan Royals defeated Chennai Super Kings by 8 wickets in the third match at the Barsapara Cricket Stadium in Guwahati last night. Chasing a target of 128 runs set by Chennai Super Kings, Rajasthan Royals overhauled the score, losing just 2 wickets in 12.1 overs. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Put into bat first, Chennai Super Kings were all out for 127 in 19.4 overs. Nandre Berger was declared the player of the match.
श्रोताओं अब आपको देंगे महानगरों का हाल, तो तन्वी कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं?
लेट्स बिगिन विद चेन्नई
जी।
IIT मद्रास हैज मेड आउटडोर गेम्स मैंडेटरी फॉर PhD स्कॉलर्स। द आउटबाउंड ट्रेनिंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द करिकुलम फॉर ऑल PhDs एंड रिसर्च स्कॉलर्स। ईच ट्रेनिंग सेशन लास्ट्स अबाउट 2 आवर्स एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक रोप क्रॉलिंग, ब्लाइंड सॉकर एंड टीम गेम्स। दीज आर डिजाइंड टू इम्प्रूव टीम वर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स।
और अब रुख कर रही है राजधानी दिल्ली की ओर। दिल्ली की जल व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने समर एक्शन प्लान 2026-27 का शुभारंभ किया है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली जल बोर्ड ऑडिटोरियम में इस पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने चैटबोट और DJB1916 मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया, जो सीधे तौर पर नागरिकों को सिस्टम से जोड़ते हैं और जवाब ही को मजबूत करते हैं। श्री सिंह ने कहा कि ये पहल उस सोच की परिचायक है जिसमें संकट को अवसर में बदलते हुए दिल्ली को भरोसेमंद जल प्रबंधन की ओर ले जाने का संकल्प शामिल है। राजधानी में स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने पाइप्ड नेचुरल गैस PNG के विस्तार को लेकर कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राजधानी में PNG कनेक्शन के विस्तार को बढ़ावा देने और नागरिकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है।
And let's move towards Bangalore. Bangalore Development Authority, BDA, has invited tenders for the first phase of the peripheral ring road. The bids will close on 4th of May. The 3,348 crore rupees project will cover 19.8 kilometer stretch from Tumkuru Road to Ballari Road with a 36-month deadline and 10 years of maintenance. The road aims to reduce traffic but has faced delays due to land issues.
और अब रुख कर रहे हैं शहर मुंबई की ओर। नवी मुंबई नगर निगम NMMC ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 6,704 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें करों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि बजट में करीब 6,704 करोड़ रुपए की प्राप्तियों और करीब 6,689 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। वित्त वर्ष के अंत में 15 करोड़ रुपए शेष रहेंगे। वित्त वर्ष के लिए प्रारंभिक शेष करीब 1,265 करोड़ रहने का अनुमान है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के अंतर्गत मुंबई विश्वविद्यालय ने अपने कलिना परिसर में 200 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। ये सौर ऊर्जा संयंत्र CD देशमुख भवन और फिरोज शाह मेहता भवन सहित 6 भवनों में लगाए जाएंगे। इसकी संयुक्त परिचालन क्षमता लगभग 187 किलोवाट है। परिसर में 85 सौर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई गई हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार इस सौर प्रणाली से बिजली के खर्च और कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।
Telangana Governor Shri Shiv Pratap Shukla attended the Rajasthan State Formation Day celebrations held at Lok Bhavan in Hyderabad yesterday. The event was organized as part of the Ek Bharat Shreshth Bharat program. Rajasthan residents living in Hyderabad participated in the event with great enthusiasm. Speaking on this occasion, Governor Shukla said that Rajasthan holds a very special place in India's culture and traditions. Inspired by Lord Shri Ram's message that one's homeland is greater than even heaven, the people of Rajasthan continue to serve the nation's development and cultural growth with great dedication, he added. The event concluded with vibrant Rajasthani cultural performances that captivated the audience.
और अब रुख कर लेते हैं आखिरी महानगर की ओर। बात कर रहे हैं कोलकाता की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले दिन कुल 78 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। पूर्वी मेदिनीपुर के नंद कुमार, महिषादल और नंदीग्राम में 3-3 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। पश्चिमी मेदिनीपुर के खड़गपुर निर्वाचन क्षेत्र में भी 3 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। श्रोताओं अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी तेज हवाओं के साथ बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
Just like Delhi, Mumbai and Kolkata, even Chennai and Bangalore are expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature for Chennai was 25 degrees and maximum will be around 31 degrees. For Bangalore, the minimum temperature was 20 degrees and maximum will be around 34 degrees. And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky but with one or two spells of rain or even thunder showers. The temperature will hover somewhere between a minimum of 24 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब बात करेंगे उन घटनाओं की जो आज के दिन यानी 31 मार्च को हुई थी। सबसे पहले बात करेंगे सन 1774 की, जब भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया।
And let's talk about 1814 during the Napoleonic Wars. Allied forces captured Paris, leading to the downfall of Napoleon Bonaparte and effectively ending his rule over much of Europe.
और 1867 में आज ही के दिन बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और 1870 में अमेरिका में पहली बार किसी अश्वेत नागरिक ने आज के दिन वोट दिया। अश्वेतों को समान अधिकार दिलाने की दिशा में ये एक बड़ी कामयाबी साबित हुई। 1889 में पेरिस का मशहूर आइफल टावर आधिकारिक तौर पर खुला।
In the year 1918, United States introduced daylight saving time for the first time during World War I as a measure to conserve energy by making better use of daylight hours.
1959 में आज ही के दिन बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण मिली।
That's right, and to add to this, 14th Dalai Lama crossed the Indian border at the Khenziman Pass in Arunachal Pradesh. He was granted political asylum by the Indian government, leading to the eventual establishment of the Tibetan government in exile in Dharamshala. In the year 1964, Bombay Electric Supply and Transport, BEST, operated its final tram service between Bori Bandar and Dadar, ending the era of tramway public transport in Mumbai. In the year 1966, Soviet Union launched Luna 10, which became the first human-made spacecraft to successfully enter and maintain an orbit around the moon. In the year 1990, Dr. B.R. Ambedkar was posthumously awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, in recognition of his role as the architect of the constitution and also his fight for social justice. In the year 1991, military structure of the Warsaw Pact was formally dissolved, signaling the end of Soviet military dominance in Eastern Europe and the final stages of the Cold War. In the year 2005, dwarf planet Makemake was discovered by a team at the Palomar Observatory. It was later classified as one of the five recognized dwarf planets in our solar system.
और 2011 में आज ही के दिन भारतीय जनगणना आयोग द्वारा जारी किए गए 15वीं जनगणना के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या पिछले 10 वर्षों में 17.64% बढ़कर 2011 में 121 करोड़ हो गई। साक्षरता दर 9.2% बढ़कर 74.04 हो गई। और श्रोताओं, अब नमन और स्मरण करेंगे उन महान लोगों को जिनकी आज जयंती, पुण्यतिथि या जन्मदिन है। तो तन्वी, आज सबसे पहले किन्हें याद कर रहे हैं?
द फर्स्ट नेम ऑन आवर लिस्ट इज जोसेफ हेडन। इट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी, एन ऑस्ट्रियन कंपोजर ऑफ द क्लासिकल पीरियड। लेट्स जस्ट हियर वन ऑफ हिज सिम्फनीज बिफोर वी टॉक अबाउट हिम। Joseph Haydn. He was pivotal in the evolution of chamber music forms like the string quartet and piano trio. His contributions to musical form have led him to be called father of the symphony and father of the string quartet. His music circulated widely in publication, eventually making him the most celebrated composer in Europe. He was a friend and mentor of Mozart, a teacher of Beethoven, and the elder brother of the composer Michael Haydn. And the next person we are going to talk about is Anandibai Gopal Rao Joshi. Today is her birth anniversary. The first Indian female doctor of Western medicine, along with Kadambini Ganguly. She traveled to New York from Calcutta, that is earlier Kolkata, and by ship, chaperoned by two female English missionary acquaintances of the Thorburns. George Robinson, then Viceroy of India, had funded her education. She was the first women from the erstwhile Bombay Presidency of British India to study and graduate with a two-year degree in Western medicine in the United States. At the age of just 14, Anandibai gave birth to a boy, but the child lived only for a total of 10 days due to lack of medical care. This proved to be a turning point in Anandi's life and inspired her to become a physician. After Gopal Rao, her husband, tried to enroll her in missionary schools but failed, they moved to Calcutta. There, she was able to learn how to read and speak Sanskrit and also English. On 31st of March 2018, Google honored her with a Google Doodle to mark her 153rd birth anniversary. And Anandi Gopal, an Indian biographical film on her life in Marathi by Samir Vidwans, was released in 2019. So let's just hear a powerful song from the same.
सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी की आज जयंती है। गुरु नानक के बाद सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव इस पद पर 1539 से 1552 तक रहे। गुरु अंगद देव महाराज जी में ऐसी आध्यात्मिक क्रियाशीलता थी जिसे पहले वे एक सच्चे सिख और फिर एक महान गुरु बने। गुरु अंगद देव लहिणा जी भी कहलाते थे। ये पंजाबी लिपि गुरुमुखी के जन्मदाता है, जिसमें सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ के कई हिस्से लिखे गए।
Today is the birthday of Kuneru Hampi, an Indian chess grandmaster. Kuneru is a runner-up of the Women's World Chess Championship and the reigning two-time Women's World Rapid Chess Champion. In 2002, she became the youngest female player and the first Indian female player to achieve the title of grandmaster, aged just 15 years, 1 month and 27 days. Kuneru is a gold medalist at the Olympiad, Asian Games and Asian Championship. So let's hear a brief interview of hers where she's mentioning the source behind the booming craze of chess in India.
Especially from the time of pandemic, I think those 2-3 years really helped a lot of the youngsters in India, you know, to learn more due to the help of online chess. And also, like you said, like Vishyanand sir's influence has a bigger role, especially in the southern part of India, like Tamil Nadu, where it's his native place. And we see like most of the grandmasters belong to Tamil Nadu.
Right.
And also thanks to the support from the government and the federation, which is, you know, giving a tremendous support so that the players gets more opportunities to compete at higher level.
It's also the birthday of Sujata Mohan, a renowned Indian playback singer known for her contributions to a wide range of Indian film industries, particularly in Malayalam, Tamil, Telugu and cinema. Over her decades-long career, she has recorded songs in other languages, be it Kannada, Badaga, Hindi and Marathi, among others. As of 2025, she had sung more than 18,000 songs. And her voice, often described as husky yet melodious, along with her ability to adapt to musical styles, has earned her a following. Let's hear one of her beautiful voice, one of her beautiful songs in Tamil.
Mm-hmm.
आज महान गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और दर्शन के ज्ञाता आइजैक न्यूटन की पुण्यतिथि है। गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज का श्रेय आइजैक न्यूटन को जाता है। इनका शोध प्रपत्र प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत सन 1687 में प्रकाशित हुआ। उनकी फिलॉसफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 में प्रकाशित हुई। ये विज्ञान के इतिहास में अपने आप में सबसे प्रभावशाली पुस्तक है, जो अधिकांश साहित्यिक यांत्रिकी के लिए आधारभूत कार्य की भूमिका निभाती है।
And today we are remembering Charlotte Bronte. Today is her death anniversary, an English novelist and poet. She is best known for her novel Jane Eyre, which was first published under the pseudonym Currer Bell. Jane Eyre was a great success on publication and has since become known as a classic of English literature. I'm sure each and every English literature person knows this term, this name, and of course the novel Jane Eyre. Let me just read out a few quotes from the novel on independence and self-worth. She says, I'm no bird and no net ensnares me. I'm a free human being with an independent will. And she also says, I would always rather be happy than dignified.
अपने दौर की मशहूर भारतीय अदाकारा महजबी बानो को भी हम याद कर रहे हैं। उन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया से अलविदा लिया। दुखांत कहानी वाली फिल्मों में इनकी यादगार भूमिकाओं के लिए याद की जाने वाली इस अदाकारा का फिल्मी पर्दे पर नाम था मीना कुमारी। मीना कुमारी ने वर्ष 1939 से 1972 तक काम किया। मीना कुमारी का फिल्मी सफर शुरू हुआ 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से। उन्हें इसी फिल्म के लिए पहली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। मीना कुमारी की दायरा, दो बीघा जमीन और परिणिता भी उनकी चर्चित फिल्मों में से हैं। उनके अभिनय की खास शैली और मोहक आवाज का जादू छाया रहा। 1962 में साहिब बीवी और गुलाम ने चार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी शामिल है। साहिब बीवी और गुलाम को ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया। भारतीय सिने जगत की मील का पत्थर कही जाने वाली मीना कुमारी की अभिनीत फिल्म पाकीज़ा लगभग 14 सालों में बनी।
Kumari, a very famous name. And the next person on our list is Jayanti Lal Gada. Today is his birthday, and do not confuse it with the character from Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. He is not that person. No, he is an Indian film producer and distributor. He ventured into film production under his production company Pen Studios. He is known for producing the 2013 Hindi language film Mahabharat, which won Best Animation Film at the 3rd Fiji Film Festival. And in 2004, he acquired the rights to supply Hindi language feature films to public service broadcaster, that is Doordarshan, beginning with the film Ye Mera India. And he also convinced Doordarshan to show the remastered and extended version of the classic action-adventure Sholay, which had record viewings figures despite its long running time. Let's hear a song from one of his super successful films that was made under his banner Pen Studios. This is from the film Kahani, which he co-produced.
श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सरफिरोजी और तन्वी खुराना को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a wonderful day.
Namaskar.